नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रभांशु भारती और आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषक मंच। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से डॉक्टर पीके सिंह, जो मुख्य वैज्ञानिक धान एवं विभागा अध्यक्ष हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिक विभाग से। आज हम लोग इनसे जानेंगे किसान भाइयों की धान बीज उत्पादन के तकनीक क्या हैं और हम कैसे अच्छे उन्नत बीजों का उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषक मंच।
आज के इस कार्यक्रम के श्रोता हमारे कृषक बंधु, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, हमारे राज्य में धान की औसत उपज काफ़ी कम है। अगर हम राष्ट्रीय पैमाने पर देखें तो हमारे राज्य की औसत उपज मुश्किल से 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि हमारा राष्ट्रीय औसत उपज 25 से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जबकि हमारा राज्य परंपरागत रूप से धान के लिए जाना जाता है, सारे संसाधन हैं हमारे किसानों के बीच, अपनी हुनर भी है, बावजूद इसके हम पिछड़ रहे हैं। इसके कई कारण हैं, इन कारणों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया और यह देखा गया है कि अपने राज्य में बीज के जो परिवर्तन की रेशियो है, रफ्तार है, वो काफ़ी कम है। जहाँ तक धान की फसल है, धान में बीज उत्पादन का जो दर होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, जबकि अपने राज्य में ये अभी मुश्किल से 12-15% है। यूँ विगत कुछ वर्षों में हमारे सरकार की सराहनीय जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उससे कुछ बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है और उसके तहत हमारे किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। खास करके उन किसान भाइयों के लिए मैं बीज उत्पादन से जुड़े हुए कुछ जो तकनीकी पहलू है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, ताकि हमारे किसान भाई बीज उत्पादन के दौरान इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान रखें, ताकि बीज की शुद्धता बनी रहे और धान उत्पादन में उनका एक सराहनीय सहयोग स्थापित कर सकें। किसान भाई, बीज को सृष्टि का मूल कहा गया है। यह किसी फसल के उत्पादन, उसके उत्पाद की गुणवत्ता एवं बाजार भाव को मौलिक रूप से प्रभावित करता है। यही कारण है यह किसी भी फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है। सामान्य भाषा में बीज का मतलब होता है किसी पौधे का वह भाग जिससे उसका वंश वृद्धि किया जाए, किंतु वैज्ञानिक भाषा में वंश वृद्धि की वही इकाई यथा दाना, कंदमूल आदि बीज कहलाता है, जो स्वस्थ एवं अनुवांशिकित एवं भौतिकी रूप से शुद्ध हो तथा जिसमें अंकुरण क्षमता एवं ओज हो। बाजार में बिना उचित जांच परख के नित्य नए नए बीज का आगमन, उनके गुणवत्ता में संतोषप्रद स्तर की कमी एवं मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि इत्यादि कारणों से आज हमारे किसान बीज खरीदने में अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ समयानुसार स्थानीय बाजार में समुचित मात्रा में क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित प्रभेदों के बीज का अभाव भी बना रहता है, जिसके चलते चाहकर भी किसान बीज बदलने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। किसान की इन्हीं सब कठिनाइयों को समझकर आज सरकारी स्तर पर किसानों की सहभागिता से बीज उत्पादन के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र विशेष के लिए अनुशंसित प्रभेदों के बीज की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित हो सके। धान उत्पादन हेतु बीज गिराने एवं रोपनी से संबंधित विभिन्न जानकारी को समझना जरूरी है। अतः धान के बीज उत्पादन की जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए जरूरी है, जिसे अपनाकर किसान अपने खेतों में स्वयं धान का शुद्ध एवं सस्ता बीज पैदा कर सकते हैं। व्यावसायिक रूप से बीज चार प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्रजनक, आधार, प्रमाणित एवं सत्य बीज कहा जाता है। प्रजनक बीज यह अनुवांशिक एवं भौतिक रूप से 100% शुद्ध होता है, अतः इसका उत्पादन पूरी सतर्कता के साथ प्रजनक की देखरेख में कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया जाता है। आधार बीज, प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है, यह 99.5% शुद्ध होता है। इसका उत्पादन मुख्य रूप से कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग के प्रक्षेत्र में किया जाता है। इसे पैदा करने हेतु बीज प्रमाणीकरण विभाग से पंजीकृत करवाना पड़ता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त निरीक्षण प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है। प्रमाणित बीज, यह आधार या विशेष परिस्थिति में प्रमाणित बीज से भी तैयार किया जाता है, यह 99% शुद्ध होता है। इसका उत्पादन कोई किसान या संस्था कर सकता है। इसे पैदा करने हेतु बीज प्रमाणीकरण विभाग से पंजीकृत करवाना पड़ता है तथा इसके द्वारा प्रदान किया गया परीक्षण प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। सत्य बीज, इसकी शुद्धता बीज उत्पादक के विश्वास पर निर्भर करता है कि क्योंकि यह किसी भी संस्था द्वारा पैदा किया जा सकता है तथा इसके लिए किसी सरकारी संस्था से पंजीकृत करवाने या निरीक्षण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतया किसानों द्वारा प्रमाणित बीज का ही उत्पादन किया जाता है। धान के बीज उत्पादन के लिए कुछ विशेष पहलू हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी होता है, जैसे कि भूमि का चुनाव। धान उत्पादन के लिए जो भूमि अनुशंसित हैं, हमारे किसान भाई पूर्णतः परिचित हैं इसमें, चिकनी दोमट समतल जमीन जिसमें जल निकासी एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो और खरपतवार से मुक्त हो, धान बीज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम पाया गया है। पृथकीकरण की दूरी, पृथकीकरण से मतलब है कि एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद के बीच की क्या न्यूनतम दूरी होना चाहिए ताकि परागण के द्वारा बीज के मिश्रण होने से उसे बचाया जा सके। किसान भाई, धान एक स्वयं परागित फसल है। स्वयं परागित से मतलब है, तात्पर्य है कि जिस पुष्प में, धान में एक ही पौधे के आप जो बाली देख रहे हैं उस पर विभिन्न पुष्प होते हैं, वो अपने ही पराग से अपने पुष्प को परागित करता है।
उसी के क्यारी धान बैठ जाता है। यदि इसका लक्षण प्रारंभ हो जाए तो उस परिस्थिति में किसानों को चिलेटेड जिंक 3 ग्राम जिंक प्रति लीटर पानी में घोलकर यदि आप छिड़काव करते हैं तो इस समस्या से आप है जो कि निजात पा सकते हैं। दहिया कीट के लिए आपको कार्बोफ्यूरान जहाँ भी मतलब उसका लक्षण नज़र आते हैं तो उसे है जो कि आकरंत पौधे के नज़दीक उसमें मतलब कार्बोफ्यूरान 10 से 15 ग्राम बालू में मिलाकर यदि आप देते हैं तो उसका है जो कि प्रहा विकास और तीव्र वृद्धि रुक जाता है और इससे आप निजात पा सकते हैं। उसके बाद इसमें है जो कि यूरिया का उपरिवेशन, तो यूरिया का उपरिवेशन जब आप पहली निकौनी या मतलब खरपतवार प्रबंधन के बाद ये 1/3 मात्रा यूरिया का आप प्रयोग करें, 1/3 के रूप में आप 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति मतलब एकड़ की दर से इसका उपरिवेशन करें। अंतिम में जो 1/3 यूरिया बचता है वह है जो कि आपका जब धान में गाभा आ जाते हैं उस समय है जो कि मतलब उसका क्रॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि किसान भाई करते हैं तो धान की सीधी बुआई में काफ़ी फायदे हैं। इसमें श्रम की बचत है, पानी की बचत है और 15 से 20 दिन पहले कोई भी मतलब प्रभेद है जो कि तैयार हो जाते हैं। मिट्टी में जो भौतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण है और रासायनिक पर्यावरण है, तीनों पर्यावरण को इससे फ़ायदा होता है। और सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि रबी फसलों में इसका है जो कि मतलब उपज और उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। और मिट्टी है जो कि मतलब उसका मतलब उर्वरा शक्ति पर भी है जो कि बुरा असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धान की सीधी बुआई कृषकों के लिए वरदान है। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, अभी अभी आपने जाना डॉक्टर मनोज कुमार जी से कि आप अगर आप सीधे धान की बुआई अगर करते हैं तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा उपज मिलती है और इसके साथ साथ समेकिक खरपतवार नियंत्रण भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप जरूर इन विधियों को अपनाएं। तो आइए एक छोटी सी परिचर्चा हम डॉक्टर साहब से लेते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जब किसान भाई हमारे इस सीधी बुआई को लेंगे तो उसके लिए खेत की रचना वो किस तरह से करेंगे?
सीधी बुआई करने के लिए सबसे पहले है जो कि आपको खेत की जुताई और खरपतवार प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। यदि गेहूं कटने के बाद हल्की सी बारिश हो जाती है या खेत जोतने लायक होता है तो उसको खेत को गहरी दो चास करके छोड़ देनी चाहिए। और यदि जोतने लायक नहीं है तो उस परिस्थिति में जैसे ही, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि अगर लंबी अवधि वाली प्रभेद या गहरा जाल या मध्यम जमीन में लगाते हैं तो उसकी बुवाई आपको है जो कि 15 जून से 25 जून तक कर देनी होगी। और यदि अपलैंड है और कम अवधि वाली धान लगाते हैं, जैसे आपका प्रभात है, पूसा 2-21 है, पूसा 44 है, राजेंद्र सुभाषनी है, राजेंद्र कस्तूरी है, जो कि ये सब 110 से 120 दिन में तैयार हो जाते हैं, तो इसकी आप बुवाई है जो कि 25 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में करेंगे। तब इसके लिए कि मुख्य रूप से खरपतवार का प्रबंधन करना होगा। यदि आपके खेत में अवशेषी खरपतवार है, अवशेषी खरपतवार के अंतर्गत जैसे मोथा होता है, दूब होता है और भी जो मैंने एनुअल टाइप के घास होते हैं, तो उसके लिए आपको राउंडअप या ग्लाइसिल या ग्लाइकोपोसेट मतलब के द्वारा बुआई से 10 दिन पहले है जो कि प्रति खेत में ही मतलब 2.5 से 3 लीटर 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देते हैं तो ये सब खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद है जो कि आपको उसमें धान, यदि आपके पास जीरो टिलेज मशीन है तब उसमें दो चैम्बर होता है जीरो टिलेज मशीन में, एक चैम्बर में आप है जो कि धान के बीज डाल दें और दूसरे चैम्बर में है जो कि DAP डाल दें। DAP के साथ कभी भी यूरिया और पोटास न मिलाएं। और यदि आपके पास 12-32-16 या 10-26-26 मिक्सचर मिल जाता है तो उसकी मात्रा कैलकुलेट करके, जो कि जैसा कि हम पहले में बता चुके हैं कि 120-60-40 की मात्रा आपको इसमें लगता है, जिसमें एक तिहाई नेत्रजन तो बुआई के समय में ही देना होता है, तो उसको कैलकुलेट करके आप उसमें एक चैम्बर में दे देंगे। तो इस तरह से है जो कि कतार से कतार आपका है जो बीज और खाद गिराते जाएगा और उसमें एक कैलिब्रेशन जो मतलब कैलिब्रेशन किया जाता है, मैंने उसको एडजस्ट किया जाता है, तो उसमें बीज दर आप मतलब ध्यान रखें कि 40 से 50 केजी के बीच में हो और उससे भी कुछ, अगर आपके पास धान अच्छे अंकुरण वाले है और भी ज़्यादा पुष्ट दाना है, अच्छा बीज है, तो उसमें आप 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से भी उसकी बुआई करके अपनी मतलब उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और बुआई करने के समय यदि बारिश नहीं हो रही है तब आपके पास एक सिंचाई दे दें और सिंचाई देने के बाद ही मतलब स्टॉम्प या पेंडी मेथिलीन का छिड़काव करें, क्योंकि सूखा में जब आप छिड़काव करेंगे तो वह खरपतवार के प्रबंधन को मतलब नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी जो रासायनिक तीरनाशी दवा है वह तभी काम करता है जब खेत में नमी होता है।
तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर मनोज कुमार जी ने बताया कि अगर आप इसकी सीधी बुआई अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले तो एक गहरी जुताई आप जरूर करें अपने खेतों में। इसके अलावा जो है, अगर आप ज़्यादा समय के अगर आप धान के बीजों को आप लेते हैं तो उसकी जो बुआई जो है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि 10 जून से 25 जून तक उसकी सीधी बुआई कर दें, और अगर कम अवधि वाली अगर आप धान के बीजों को लेते हैं तो 25 से 10 जून तक में उसकी 25 जून से लेकर 10 जुलाई तक में उसकी आप बुआई कर सकते हैं और इससे जो है आप काफी ज्यादा इससे फ़ायदा भी आप कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी जीरो टिलेज मशीन का अगर आप प्रयोग करें तो ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि उसका आपका जो बीज जो गिरेगा आपके खेतों में, तो उसके ऊपर आप हमेशा ध्यान देते रहें ताकि आपका बीज वगैरह अटके नहीं और एक जगह फिर रहना जाए। अगर आप सीधी बुआई करते हैं तो एक तो आपका खेत भी देखने में अच्छा रहेगा, दूसरा उसमें फसल भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी। अच्छा सर, ये बताएं कि हमारे बिहार के जो किसान हैं उनको अभी भी जीरो टिलेज मशीन के बारे में जानकारी नहीं है और बहुत मतलब हमारे जो बिहार के किसान हैं वो काफ़ी निम्न तबके के हैं, गरीब तबके के हैं, जिस कारण से उन्हें इनके बारे में जानकारी भी नहीं और दूसरी ये प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं कहीं से, तो इस परिस्थिति में अगर वो जीरो टिलेज मशीन के द्वारा अगर वो सीधी बुआई करना चाहें या खेती करना चाहें तो वो ये कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस चीज़ को?
इसके लिए मतलब किसानों को प्रत्येक जिला में एक जिला कृषि विज्ञान केंद्र खोल दिया गया है और इसके अलावे वहाँ पर कृषि यांत्रिकरण के वैज्ञानिक बैठते हैं जो कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। और हम बता देना चाहते हैं कि आपके मतलब हमारे यहाँ दो कृषि विश्वविद्यालय भी हैं जहाँ पर भी जीरो टिलेज मशीन वहाँ है और वहाँ से किसान भाई निःशुल्क प्राप्त करते हैं, सिर्फ उसका मेंटेनेंस या सिक्योरिटी मनी के रूप में कुछ पैसा जमा करना पड़ता है। ऐसे विशेष जानकारी के लिए आप अपने जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत वैज्ञानिकों से आप संपर्क स्थापित करके और उसके बारे में गहन मतलब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में जीरो टिलेज मशीन उपलब्ध है जो कि निःशुल्क में कुछ मतलब उसका सिक्योरिटी मनी जमा करके आप अपने बुआई कर सकते हैं और फसल की अत्यधिक उत्पादन सकते हैं।
तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने जाना कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर जीरो टिलेज मशीन के द्वारा अगर आप खेती करना चाहते हैं, अगर आप इसके इच्छुक हैं, तो आप जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर एक जिला में जो एक कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ है वहां से आप इसे आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं और जैसा कि यहां से निःशुल्क आपको दिया जाता है, लेकिन जिससे आप इसे अपने खेतों में ले जाएंगे वहां से, तो आप वहां पे एक छोटी सी जो एक मामूली सी रकम है जो कि सिक्योरिटी के तौर पे वहां रखी जाती है, तो वो आप दे के आप उसके बाद उस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं और करने के बाद जो है आप फिर पुनः उसे वापस ला सकते हैं। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और दूसरा इसमें उपज क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। अच्छा सर, इसमें उर्वरकों का प्रयोग वो किस तरह से करेंगे हमारे किसान भाई?
जीरो टिलेज मशीन में आप मतलब इसमें दो चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर में मतलब है जो कि बीज डाल दिया जाता है, दूसरे चैम्बर में है जो कि उर्वरक डाल दिया जाता है। इसमें मिश्रित टाइप के उर्वरक यदि किसान भाई प्रयोग करते हैं, मिश्रित टाइप का मतलब है कि 12, 32, 16, 10, 26, 26, जिसमें कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों ये मतलब इन्ग्रीडियंट मिले हुए रहते हैं तो ज़्यादा कारगर होते हैं। परंतु यदि किसान भाई DAP, यूरिया और पोटास के द्वारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की मात्रा देना चाहेंगे तो उस परिस्थिति में DAP को दूसरे चैम्बर में दे दिया जाता है और बाकी जो यूरिया और पोटास है उसको है जो कि हम लोग प्रति खेत में ही छटवा देते हैं और इस तरह से है जो कि उसका बीज और खाद की बुआई मतलब आसानी से हो जाता है और दोनों है जो कि बगल बगल में मतलब कतार से कतार गिराते जाता है, जिससे है जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की अपटेक इफिशेंसी लेने की क्षमता भी मतलब छिड़काव विधि से है जो कि ज़्यादा होता है।
बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें जो है अगर आप उर्वरकों का प्रयोग करना चाहें तो ये भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बस इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, आप ये हमेशा बिल्कुल उसमें ध्यान रखें तो इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा उपज मिलेगा। दूसरा, आपका इसमें उर्वरकों का और साथ में जो बीज है उसका भी आपका बहुत हद तक बचत होता है और जितनी आपके खेतों में ज़रूरत होती है उसी हिसाब से आप उसमें सेट करके आप उससे आप गिरा सकते हैं। तो किसान भाई आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें सिंचाई व्यवस्था किस तरह का रखेंगे?
देखिए, इसमें धान के सीधी बुआई में पानी है जो कि बहुत कम लगता है और इसमें फायदा यह है कि
धान के फसल की सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। यदि इस अवस्था पर आप 5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर पानी अपने खेत बना रखे हैं तो आप उच्च उत्पादकता के साथ साथ उच्च गुणवत्ता युक्त सुगंधित धान के बीजों की प्राप्ति कर सकते हैं।
किसान भाइयों, आपने जाना कि सुगंधित धान के बीज उत्पादन के लिए जल प्रबंधन कितना आवश्यक है और किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि जैसे सब जानते हैं कि धान की खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। डॉक्टर KK सिंह साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे रोगिंग के बारे में कि फसल के आसपास जो अवांछित पौधे निकल आते हैं उनको किस तरह बाहर निकालें।
किसान भाइयों, जहाँ तक सुगंधित धान बीज उत्पादन में रोगिंग प्रक्रिया का सवाल है तो आप जिस प्रजाति के सुगंधित धान के जिस प्रजाति का बीज उत्पादन कर रहे हैं उस प्रजाति के अलावा दूसरी प्रजाति के जितने भी पौधे हैं या खरपतवार के पौधे होते हैं, या बीमारी लगा पौधा होता है, कीड़ा लगा पौधा होता है, जिसको इन सभी पौधों को ऑफ टाइप या बीजाती पौधे होते हैं, ऐसे इन सभी पौधों को उस प्रजाति बीज उत्पादन प्रजाति वाले पौधे के अलावा जितने भी पौधे खेत में आपके अन्य पौधे हैं, इन पौधों को रोग कहा जाता है। और यही पौधों को यदि आप खेत से बाहर निकाल देते हैं तो इस प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं, यानी कि अवांछित पौध को खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। तो किसान भाइयों, सुगंधित धान के बीज की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अवांछनीय पौध निकालने की प्रक्रिया खड़ी फसल में लगभग 2 बार करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम बार किसान भाइयों जब पुष्पावस्था आती है, यानी कि पुष्प निकलने की अवस्था होती है, उस अवस्था पर आप खेत में जाएं और इस अवस्था पर ऐसे पौधे को निकालें जो आपको मुख्य फसल की मुख्य प्रजाति की जो है उससे, चाहे उसकी ऊंचाई से भिन्न हो या कल्ले में अंतर आता हो या पत्ती का आकार और प्रकार अलग दिखाई पड़ता हो या तूड़ प्रकार का रंग दिखाई पड़ता हो आदि, इसके अलावा जो दूसरे खरपतवार या बीमारी लगे पौधे हैं, इन सबको निकाल करके आप बाहर कर दें। ठीक इसी प्रकार दूसरी बार अवांछनीय पौध को निकालने की प्रक्रिया तब होती है जब फसल हमारी परिपक्व अवस्था पर आती है। परिपक्व अवस्था पर आप देखिए कि प्रथम बार रोगिंग करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और पौधे बचे हुए हैं हमारे, जो कि हमारे उस अब शुद्ध बीज की में मिलावटी का कार्य कर सकते हैं। ऐसे अन्य विजाति पौधों को परिपक्वता फसल की परिपक्वता अवस्था पर आप निकाल करके खेत से बाहर कर दें। यदि आप फसल की खड़ी अवस्था पर आप रोगिंग की प्रक्रिया करते हैं तो किसान भाइयों आप उच्च गुणवत्ता युक्त शुद्ध बीज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों यदि आपने रोगिंग की प्रक्रिया पुष्पावस्था पर नहीं करी है, सबसे ज़्यादा संदूषण पुष्पावस्था पर ही होता है, क्योंकि पुष्पावस्था पर परागण की प्रक्रिया होती है। इस अवस्था में जिस प्रजाति का बीज आप उत्पादित कर रहे हैं उसके अलावा जो दूसरी प्रजाति का बीज अगर उसके साथ लगा हुआ है तो उसके परागकण आ करके आपके मुख्य प्रजाति जिसका बीज उत्पादन सुगंधित धान का आप कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित करते हैं, जिससे कि आपको शुद्ध बीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों शुद्ध बीज की और आनुवांशिक रूप से शुद्ध बीज की प्राप्ति करते समय आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपको रोगिंग की प्रक्रिया करना अति आवश्यक है।
किसान भाइयों आपने रोगिंग प्रक्रिया के बारे में डॉक्टर के सिंह साहब से जाना और अब जानते हैं कि सुगंधित धान के बीज उत्पादन में जब हमारी फसल खड़ी हो जाती है तो उस फसल की सुरक्षा किस प्रकार करनी चाहिए।
किसान भाइयों जिस तरह सुगंधित धान के बीज उत्पादन में खेत का चयन, पृथक्करण दूरी, उन्नत प्रजाति का चयन, रोगिंग प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक उसी